Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Srimad Bhagavad Gita ke 9ve adhyay ka mahatmya. महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं आदरपूर्वक नवम अध्याय के महात्मा वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर माहिष्मती नामक एक नगरी है। वहां माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब उसको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर में कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञ द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म जरा और मृत्यु के भी कारण है। ये सब कहर करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अपलक नेत्र से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के हैं? आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? ये सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक को रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वो बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया। ओ ब्राह्मण, मैं नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे के जोनी में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु जनि में पड़ा हूं, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूं। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने को तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर और पुरोहितों के साथ तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और दो वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्य से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चंडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चंडाली के रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चंडालों की वो जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के नवम अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप ये सब कौतिक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतकरण में भगवान गोविंद शयन करते हैं थे। वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के नवम अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चंडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, ये महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर ले रहे थे? वो पुरुष तथा वो स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? ये सब मुझे बतलाइए। तो ब्राह्मण ने कहा, राजन, चंडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वो स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूं। इस समय मैं गीता के नौवे अध्याय के मंत्र की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के नवम अध्याय का जप करता हूं। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हूं। ये सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के नवम अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति को प्राप्त हो गए। ये कहकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के नवे अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत गीता की। तो गीता महात्म्य समझने में दिक्कत हुआ है किसी को? हाँ, समझ गए सब? तो नव आज कौन सी अध्याय हम पाठ करेंगे? ये पाठ करने से फायदा क्या होगा पता है? वेरी गुड। सारे पाप, जैसे पाप पुरुष भी खुद भाग जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप नवम अध्याय राजविद्या राजगृह योग। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गृह ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, जो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारे वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिसे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इन मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हे महात्मा, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्तिभाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य धनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूं। मैं घेय शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। मैं अमरत्व हूं और मैं साक्षात मृत्यु भी हूं। आत्मा तथा सत असत दोनों मुझे ही में हैं। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं जहां वे देवता का सा आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वार्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्म का फल क्षीण हो जाने हैं जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख को गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उसकी जो आवश्यकताएं हैं होती हैं उसे उन्हें मैं पूजा पूरा करता हूं और जो तुष्ट जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं वास्तव में वे भी मेरी पूजा ही करते हैं किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। मैं ही समस्त जगों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास निवास करते हैं। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो जो कुछ खाते हो जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस सन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। मैं तो न किसी से द्वेष करता हूं न ही किसी के पास पक्षपात करता हूं। मैं सबों के लिए समभाव हूं। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझसे स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूं। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए क्योंकि वो अपने संकल्प में अडीग रहता है। वो तुरंत धर्मात्र बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। मैं ही पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य व्यापारी तथा शुद्ध श्रमिक क्यों न हो वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में या आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। इस अनुवाद में थोड़ा सा गलत है, ये सुधार लेना। ये प्रभुपाद जी का ऐसा अनुवाद नहीं है। ये इस पहले का जो श्लोक है, मांग ही पार्थ व्यापारित, अर्थात हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो। इसका मतलब है असल में चाहे वो निम्न जन्मा हो या स्त्री हो या वैश्य हो या शूद्र हो, यह ऐसा नहीं कि स्त्री निम्न जन्मा है, वो परम धाम को प्राप्त करते हैं। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस अध्याय का मूल भाव समझ लिए हैं आप लोग सब। अच्छा, इसके पहले मैं एक प्रश्न आपको करना, एक सजेशन है। आप यहां के रहने वाले कौन है? उज्जैन के रहने वाले? अच्छा, जो उज्जैन के रहने वाले हैं उनके घर में भगवद गीता है? सबका घर में भगवद गीता है? तो शाम को जब आएंगे ना मंदिर में, भगवद गीता लेकर आना चाहिए। भगवद गीता लेके आना, तुम साथ लाए हो मंदिर से लिए। अच्छा, घर में है ना, तो साथ में भगवद गीता रखना। हाँ, मोबाइल फोन तो कभी छोड़ के नहीं जाते। वैसे भगवद गीता को भी अपने पास रखो। और ये तो एक है, और जो बाहर से आए हैं, कौन कौन आए हैं? अच्छा, तो बाहर से जो आए हैं आपके पास, किसके पास भगवद गीता है? अच्छा, बहुत अच्छा। किसके पास नहीं है? अच्छा, तो जिसके पास नहीं है, आप क्या सोचते हैं कि रखना चाहिए भगवद गीता? साथ में रहना चाहिए हर समय? जैसे मैं बोला, अब तो मोबाइल फोन छोड़ के कभी नहीं जाते हैं, तो अब बताइए अधिक जरूरी कौन सी को क्या है? मोबाइल फोन और भगवद गीता? तो भगवद गीता साथ रहना चाहिए, रखना चाहिए। हाँ, तो साथ में भगवद गीता रखना। तो जो आए हैं बल्कि नहीं हैं, यहां डिस्काउंट प्राइस में भगवद गीता दिया जा रहा है। हाँ, तो आप ले सकते हैं। हाउ मच इज द प्राइस ऑफ भगवद गीता? दैट इज द एग्जैक्ट प्राइस। व्हाट इज डिस्काउंट प्राइस? ठीक है, जो बाहर से आए हैं वो 50 रुपये में उनको मिल जाए। बल्कि साथ में भगवत, एक शर्त है कि भगवत गीता हर समय साथ में रखना चाहिए। रखेंगे? कौन कौन रखेंगे? गीता रखेंगे हाथ में? कौन हर समय गीता रखेंगे, चाहे हो या नहीं हो? हाथ उठाइए। कौन कौन रखेंगे भगवत गीता? हाँ, पीछे का क्यों हाथ नहीं उठा रहा? बंगाली भक्त लोग क्या है? सो गीता हर समय साथ में रखना। तो कौन हाथ साथ में गीता नहीं रखेंगे, हाथ उठाइए। कौन नहीं रखेंगे? ऐसे कौन महात्मा है? तो भगवद गीता हर समय साथ में रखना चाहिए। हाँ, हर समय साथ में रखना। जब ऑफिस में भी जाते हैं तब भी रखना। एक बैग जाते हैं ना साथ, तो बैग में रख दीजिए। क्या है बैग में? क्या रहता है? मोबाइल फोन रहता है। ऐसे मतलब, कहने का मतलब ये है कि जब मौका मिलेगा भगवद गीता खोल के पाठ करने से फायदा होता है। तो ये नवम अध्याय का जो ज्ञान है, ये गुह्यतम राजविद्या है। राजविद्या, राज का मतलब क्या है? श्रेष्ठ। राज शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ, राजा श्रेष्ठ व्यक्ति होता है राज्य में। तो वैसे ही सारे विद्या, सारे ज्ञानों में जो श्रेष्ठ ज्ञान है वो ये नवम अध्याय में दिया गया है, अर्थात भक्ति का सार निचोड़ ये नवम अध्याय में वर्णन हो रहा है। और ये नवम, ये राजविद्या प्राप्ति का पात्रता क्या होता है, योग्यता क्या होता है, कौन व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं, समझे हैं? किसको पता नहीं है और किसको पता है? या जयेश हाथ उठाए तुम्हारा? हाँ, ये क्लास कौन सी भाषा में हो रहा है? ईर्ष्यालु नहीं होते हैं, जो भगवान के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होते हैं और जो भगवान के भक्त हैं वो इस ज्ञान प्राप्त का लायक है, इस ज्ञान प्राप्ति के लायक है। भगवान के प्रति कभी विद्वेष भाव, भगवान के प्रति कभी ईर्ष्यालु नहीं होना। अर्जुन भगवान के मित्र थे, भगवान के भक्त थे, इसलिए भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर इस ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं। ये ज्ञान का विशेषता क्या है? ये ज्ञान, ये यद्यपि ये राज विद्या है और यद्यपि ये राज गुह्य है, मतलब गुह्य तम सबसे गहरा ज्ञान है ये नवम अध्याय का ज्ञान, फिर भी यह है सुसुखम, बहुत ही आसानी के साथ सुख पूर्ण रूप से हम इस ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं और इस ज्ञान को संपन्न कर सकते हैं। इस मतलब भक्ति का आचरण, भक्ति का अनुशीलन और भक्ति के अनुष्ठान बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। बल्कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति श्रद्धालु नहीं है, जो भगवान को नहीं मानते हैं और जो भगवान के पास अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं, उसका क्या गति होता है? वो अश्रद्ध धाना पुरुष, उसका गति क्या होता है? अप्राप्य माम, वो कभी हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। और मृत्यु संसार वर्तनी निवर्तन्ते, वो फिर से बार बार उसको इस मृत्यु लोक में, मर्त्य लोक में आना पड़ता है। तो हम क्या चाहते हैं, बार बार मर्त्य लोक में आए? कौन चाहता है मर्त्य लोक में बार बार आने के लिए? कोई नहीं। तो क्या करना चाहिए? भगवान के प्रति अश्रद्ध धाना होना चाहिए, न तो ना क्या भगवान के प्रति श्रद्धालु होना चाहिए? भगवान के प्रति श्रद्धा परायण होकर भगवान से, भक्ति भाव से भगवान के पास अपने आप को समर्पण करना चाहिए। और इसके बाद भगवान कह रहे हैं कि ये सारे जगत भगवान की अव्यक्त रूप में व्याप्त है, समस्त जीव भगवान में ही हैं, और बल्कि भगवान किसी में भी, किसी के आश्रय में नहीं। हर व्यक्ति भगवान के आश्रय में है, बल्कि भगवान किसी को आश्रय में नहीं। इसके पश्चात भगवान कह रहे हैं कैसे भगवान सबको आश्रय हैं और भगवान कैसे सबको पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। हम लोग जो जिंदा हैं इसका कारण क्या है? भगवान की कृपा। भगवान का कृपा अगर नहीं होता तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर कोई बोलेगा भगवान का जरूरत नहीं है, तो उसको सोचना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ा समय के लिए बंद हो जाएगा, भगवान अगर ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देंगे तो हमारा हाल कैसा होगा। और भगवान कह रहे हैं कि जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, वो भगवान को अवज्ञा करता है, भगवान को उपहास करते हैं। जब देखते हैं कि भगवान मनुष्य के तरह मनुष्य रूप से इस जगत में आए, भगवान हर स्थिति में भगवान ही रहते हैं। इस भौतिक जगत कष्ट पाने के स्थान है, हम सबको यहां कष्ट मिल रहा है, बल्कि भगवान जब आते हैं भगवान को यह कष्ट नहीं मिलता है। जैसे कारागार में कैदियों को क्या मिलता है, कारागार में कैदियों को सजा मिलता है। तो राजा अगर कैदखाना में कारागार में जाता है तो राजा क्या कैदी बन जाता है? हर स्थिति में राजा राजा ही रहता है, मतलब कारागार का मालिक ही रहते हैं, ईश्वर रहते हैं। राजा अगर कैदी का वेश भी पहन लिया तो भी राजा कैदी नहीं होते हैं, है ना। तो वैसे ही भगवान जो सारे संसार के मालिक हैं, भगवान जब यहां आते हैं भगवान एक साधारण मनुष्य जैसा नहीं बन जाते हैं, भगवान हर स्थिति में भगवान ही रहते हैं। तो परंतु भगवान जब आते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि ये भगवान की कितनी कृपा है कि उन्होंने हमें शिक्षा देने के लिए, हमें यहां से निकलकर अपने पास बुलाने के लिए भगवान यहां आए। ये भगवान का कृपा का ही प्रकाश है। और इसके पश्चात भगवान बता रहे हैं जो भगवान के भक्त बनते हैं, जो भगवान को शरण लेते हैं, उसका स्थिति कैसी होती है। भगवान को शरण जो लेते हैं वो महात्मा बन जाता है। महात्मा कौन है? महात्मानस्तु मांग पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रितः। जो भगवान का प्रकृति, भगवान का प्रकृति का आश्रय लिए हैं वो है महात्मा। और उन्होंने अनन्य भाव से भगवान को सेवा कर, भगवान की सेवा करते हैं। हे महा, अच्छा, और वो ऐसे महात्मा क्या करते हैं? सततं कीर्तयन्तो माम, निरंतर मेरा महिमा कीर्तन करते हैं। अर्थात या तो हर समय भगवान के बारे में दूसरे को सुनाते हैं, भगवान का वाणी का प्रचार करते हैं, नहीं तो हरे कृष्णा 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 हरे 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 ये मंत्र जपते हैं। सततं कीर्तयन्तो माम, कीर्तन का मतलब क्या होता है? एक तो मंत्र का उच्चारण उच्च रूप उच्च स्वर में, और कीर्तन क्या है? भगवान के बारे में सुनाना, भगवान के बारे में दूसरे को बताना, और एक कीर्तन है भगवान के प्रचार के लिए आयोजन करना, भगवान के वाणी का प्रचार का आयोजन। ये तीनों ही कीर्तन है। तो भक्त जो है, महात्मा जो है, वो क्या करते हैं? सततं कीर्तयन्तो माम, निरंतर मेरा ही कीर्तन करते हैं। इसके बाद भगवान कह रहे हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि स्वर्गलोक में जाकर अमृत को पान करेंगे, अमृत पिएंगे और मजा करेंगे, वहां बहुत सारे वहां एंजॉयमेंट सुख भोग करेंगे, बल्कि वो लोग को क्या होता है जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है या खत्म हो जाता है तो फिर उसको इस जगत में आना पड़ता है। और स्वर्गलोक में जो उसका जो कुछ मिल रहा है वो भी भगवान के अनुमोदन के कारण ही उसे मिल रहा है, तो इसलिए वो परोक्ष रूप में परोक्ष भाव से भगवान का ही पूजा कर रहे हैं, बल्कि देव देवियों के माध्यम भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो मतलब जो भक्त हैं वो देव देवियों को माध्यम भगवान को पूजा नहीं करते, वो भगवान के शुद्ध भक्त के माध्यम भगवान की पूजा करते। देव देवियां शुद्ध भक्त नहीं, भगवान के भक्त हैं सही, बल्कि शुद्ध भक्त नहीं। देव देवियां स्वर्गों को, देव देवियां अधिक से अधिक देव देवियां भगवान के कर्म मिश्रा भक्त है। उन लोगों ने भगवान का भक्ति कर रहे हैं क्यों? सुख भोगने के लिए, स्वर्गलोक में सुख भोगने के लिए। बल्कि जो शुद्ध भक्त है वो कभी किसी प्रकार का सुख नहीं चाहते। अन्नाभिलाषिता शून्यम, उसे भगवान को सेवा, उनको भगवान को सेवा बिना और कोई किसी प्रकार का अभिलाषा नहीं रहता है। इसके बाद भगवान कह रहे हैं कि जो देवताओं को पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। मृत्यु के पश्चात उसका गति कहां होगा? जो देवताओं को पूजा करता है देवताओं के पास जाएंगे स्वर्गलोक। और जो पितृलोक पितृपुरुषों का पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाएंगे। जो भूत प्रेत का पूजा करते हैं, ऐसे हैं कुछ लोग, तो वो लोग भूत प्रेत का जो पूजा करते हैं श्मशान में, यहां वैसे होता है बहुत, सशतांत्रिक लोग हैं वो श्मशान में भूत प्रेत का पूजा करता है, तो वो लोग कहां जाएगा? उसको चेतावनी देना चाहिए कि ऐसे नहीं करना चाहिए, प्रेत बन जाओगे भूत बन जाओगे, फायदा क्या है। और जो भगवान का भक्त है वो कहां जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं। और भगवान को पूजा करना कितना आसान है देखिए, थोड़ा सा पत्र, पत्ता, तुलसी के पत्ता, फूल, फल और थोड़ा पानी, इसके द्वारा ही भगवान का पूजन होता है, इसके ही द्वारा भगवान का पूजन होता है। पत्रं पुष्पं फलं तोयम्, इसके द्वारा अगर भगवान का पूजा होता है तदहम भक्ति उपरहितम अश्नामी प्रजतात्म, तो मैं उसको ग्रहण करता हूं क्योंकि ये भक्ति के द्वारा इसका अर्पण हुआ है। इसलिए जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम खाते हो, जो कुछ यज्ञ में दान करते हो, तपस्या करते हो, सब कुछ मेरे में मेरे लिए ही करो, मुझे अर्पित करते हुए करो। और ऐसा कभी लगता है कि जो भगवान का भक्ति कर रहे हैं, बल्कि लगता है कि वो कुछ पाप काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि फिर भी उनको भक्त ही समझना चाहिए। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्न भाग, अनन्न भक्ति से कोई अगर भगवान को पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसको साधु ही समझना चाहिए, यद्यपि वैसे लगता है कि वो दुराचारी है। मतलब ना, जो काम नहीं करना चाहिए वैसा काम कर रहे हैं, फिर भी उसको भक्त के रूप में ही देखना चाहिए, साधु के रूप में। और वो अगर मतलब जो भक्ति कर रहा है उसमें अगर कुछ गलत फहमी रह भी गया है, शीघ्र ही वो उससे मुक्त हो जाएगा, शुद्ध और शुद्ध बन जाएंगे। क्षिप्तं भवति धर्मात्मा स्वच्छ शांति निगच्छति कौन्तेया प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रनश्यति, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होगा। और कोई भी मेरा भक्त हो सकता है, तचाचिता चाहे वो कितना पापी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे वो चंडाल भी हो, कोई भी व्यक्ति भगवान के भक्त बन सकता है। ये भगवान का ही वाणी है। इसलिए क्या करना चाहिए, अंतिम श्लोक का अंतिम निर्देश क्या है भगवान का, मन मना भवो मद भक्तो मत जाजी मांग नमस्कुरु मामे वैशेषी कौन्ते युक्त एवं प्रतिजाने प्रियोसी में। तुम निश्चित रूप से मुझे मुझको प्राप्त होगे। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप में मुझको प्राप्त होगे। हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे हरे।